आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर सुभाष शर्मा मेलबर्न से। डॉक्टर सुभाष शर्मा हिंदी में अग्रसर हैं, अपना एक साहित्य संध्या करके कार्यक्रम भी चलाते हैं और इसके अलावा वे पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर हैं। ज्यादा मैं बताऊं उससे बेहतर है कि हम डॉक्टर शर्मा से ही बातचीत करें। तो डॉक्टर शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज SBS हिंदी के इस पटल पर।
वैशाली जी, बहुत बहुत आभार ये मुझे अवसर देने के लिए, और सबसे पहले आपके SBS के श्रोताओं को मेरा नमन, मेरा नमस्कार जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं।
तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस का मौका है डॉक्टर शर्मा, क्या आपको लगता है कितने जरूरी हैं इस तरह के आयोजन और कहाँ आप इस समय हिंदी को देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय पटल में?
देखिए, ये कुछ जैसे पर्व होते हैं, त्योहार होते हैं, चाहे दिवाली हो चाहे क्रिसमस हो, ये अपने आप को रिमाइंड कराने के लिए, अपने आप को याद दिलाने के लिए कि हम उन चीज़ों से जुड़े रहें जो हमारी कार्य पद्धति है, जो हमारे कार्यकलाप है, उनसे हम जुड़े रहें। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि ऐसे आयोजन जो है हम समय समय पर करते रहें, और उन्हीं की एक श्रृंखला ये है कि हम दो चीज़ें, एक हिंदी दिवस जो 14 सितंबर को मनाते हैं, और ये विश्व हिंदी दिवस। लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि एक साल में ये दो हिंदी की कार्यक्रम होते हैं। पहला तो हिंदी दिवस जो अपने भारत के लोगों को फोकस करके उन पर केंद्रित होता है, और दूसरा ये विश्व हिंदी दिवस कि भारत की भाषा अगर अनौपचारिक रूप से आप देखें तो लगभग 1.2 बिलियन लोग इस हिंदी भाषा को किसी न किसी रूप में समझते हैं या जानते हैं। तो ऐसी भाषा को विश्व स्तर रूप में, ताकि राष्ट्रीय सम्मान मिले और दूसरे यूनाइटेड नेशंस में, संयुक्त राष्ट्र में भी इसको स्थान मिल सके, हमारा ये प्रयास रहता है, और इसलिए ये होना बहुत आवश्यक है।
जी, तो ये तो हमने बात की कि भाषा कहाँ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और क्यों इस दिवस की आवश्यकता है, लेकिन अब बात करते हैं भाषा के लेखन की। तो हिंदी कविता लेखन में ऐसा क्या अलग है डॉक्टर शर्मा जो दूसरी भाषाओं में हमें नहीं मिलता?
देखिए, पहली बात तो ये, कोई भी भाषा वो विचार और भावनाओं से युक्त होती है। हम किसी भी भाषा में अपने विचार तो व्यक्त कर सकते हैं, हम उस भाषा में कुछ समझ सकते हैं, चाहे विज्ञान हो चाहे आर्ट हो साइंस हो, हम समझ सकते हैं। लेकिन जब भावनाएं व्यक्त करने की बात आती है तो मनुष्य को उसकी एक ही भाषा बहुत प्रिय जो होती है, जो उसने अपने माँ के मुंह से सुनी है, उन भाषा में, उस भाषा में जब वो बात करता है तो भावना और विचार दोनों को वो जोड़कर बात करता है। तो इसलिए अब बात आती है कि हिंदी में कविता में, मैं ये नहीं कहता कि हिंदी, जैसे बहुत से लोगों का ये विचार है कि हिंदी सुगम है, हिंदी वैज्ञानिक है, हिंदी सरल है, हिंदी वेदों की भाषा है, ये सब मैं इसमें कोई विश्वास नहीं रखता। जितनी हिंदी प्यारी है उतनी लोगों को अपनी अपनी भाषाएं प्यारी है, चाहे वो मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, जो भी हो। तो इसलिए ये हम नहीं कह सकते, और हर भाषा का उस, चूंकि भावनाएं जुड़ी है, उसका अपना महत्व है। इसलिए जो हिंदी की कविता है, जो वो अपने देश की, अपने भारत की संस्कृति को उसमें प्रदर्शित करती है, इसलिए उसका एक अपना ही स्थान है।
तो आपने हिंदी लेखन कैसे शुरू किया फिर कविता का लेखन?
देखिए, कविता तो मैं नहीं समझ, मैं समझता हूँ कि कविता या गीत या गाना या संगीत हर व्यक्ति के हृदय में बसा हुआ है। वो उसे व्यक्त ना कर पाए लेकिन गुनगुनाता जरूर है, कोशिश करता है जोड़ने की, शब्दों को जोड़ने की कोशिश करता है। और मुझे भी कुछ ऐसा ही जो आभास हुआ, मैं पहले बचपन में मैंने कुछ कविताएं लिखी होंगी, फिर मेरी शादी के बाद मेरे फादर इन लॉ, मेरे ससुर साहब जो यहाँ आए, वो कविता लिखते थे, उन्होंने लिखी, तो फिर दोबारा भाव जागृत हो गया। तो मेरी पत्नी का भी मुझे प्रोत्साहन मिला, डॉक्टर पल्लवी शर्मा मेरी पत्नी है, उनका भी प्रोत्साहन मिला। तो इस तरह से जो है मैंने फिर लिखना शुरू किया, चूंकि हिंदी से मेरा पहले से ही लगाव था, तो यहाँ पर एक साहित्य संध्या नाम के नाम पर कुछ प्रवासी भारतीय बैठ जाते थे और अपनी अपना व्यथा सुनाते थे। सुनाते सुनाते मैं भी उससे जुड़ गया, पर जब मैं जुड़ गया तो साहित्य संध्या ने, जब मैंने देखा कि और लोग उसमें ज्यादा रुचि नहीं ले रहे हैं, तो मैंने कहा ये भार फिर अब मैं ही उठाता हूँ और लोगों के सहयोग से, और तब से 20 साल से ये सुचारू रूप से चलता चला।
डॉक्टर शर्मा, आपने तो 1965 में भी हिंदी के आंदोलन में हिस्सा लिया और सब किया, तो वो आपका यूथ था, आपकी जवानी का समय था, लेकिन आज जो नौजवान हैं उनको हिंदी से जोड़ने के लिए क्या कर सकते हैं, वे कैसे रुचि बनाए रखें?
देखिए, हिंदी का ये बहुत बड़ा प्रश्न है, और ये प्रश्न मेरे से लोग जब करते हैं कि भारत में तो लोग जो है एक रिक्शा पे बैठ के मजदूर का बच्चा टाई लगा के अंग्रेजी सीखने जाता है, तो ये तो बड़ी विडंबना वाली बात है। लेकिन बिल्कुल सही बात है कि यहाँ के लोगों को हिंदी सीखने की ज्यादा जरूरत है यदि वो अपने संस्कृति से जुड़े रहना चाहते हैं। वहां के लोगों को तो अंग्रेजी हिंदी जो है सब्जी वाला सिखा देगा, स्कूटर टैक्सी वाला सिखा देगा, आपस में लोग रेडियो टेलीविजन वहां पे सिखा देंगे, यहाँ आपको कौन सिखाएगा? तो ये दे आप इस बहुसंस्कृतीय गुलदस्ते में एक भारत का भी फूल रखना चाहते हैं, तो ये आवश्यक है कि आप अपनी भाषा से जुड़े रहें, आप अपनी संस्कृति से जुड़े रहें, आप भारत की भावनाओं से जुड़े रहें, और आप भी इस ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह में जो बहुसंस्कृतिक देश है, इसमें अपेक्षा की जाती है कि अच्छी अच्छी बातें हर संस्कृति से लाई जाए, तो आप भी अपना योगदान दें, इसलिए ये बहुत जरूरी है। और उसके लिए एक मंत्र एक ये है कि घर पर हिंदी ही बोले, या घर पर वो भाषा बोले जो आपकी मातृभाषा, गुजराती, मराठी, गुड़िया, जो भी बोलते हैं वो बोलनी जरूरी है। और जब आप भारतीय अपने रंग जैसा दूसरा व्यक्ति देखें तो प्रयास करें कि हिंदी में बात करें।
डॉक्टर शर्मा, आपने किताबों का सह संपादन भी किया है, तो अब जो नए लिखने वाले आ रहे हैं उनको क्या सलाह देंगे कि हिंदी को किस तरह से आगे लेकर के जाएं?
देखिए, जो साहित्य संध्या के नाम पर जो हम गोष्ठी करते हैं उसका यही अभिप्राय है कि लोग कविता के माध्यम से हिंदी का प्रचार प्रसार करें और दूसरों तक पहुंचने का प्रयास करें। तो जो उनके मन में भाव आते हैं उनको कागज पर रखें, और हमारे साहित्य संध्या जैसी संस्था में किसी में जाएं जहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है कि आपको हिंदी के बहुत अच्छे कवि होने चाहिए, आप वहां प्रयास करें। और हम जैसे लोगों ने एक साथ बैठकर ही कविता लिखना सीखा है, तो मैं चाहूंगा कि जब आपस में आदान प्रदान आप करते हैं विचारों का कविता के माध्यम से, तो आपके विचार और स्फुटित होते हैं और आप उनको और बढ़ावा मिलता है, आप दूसरों से सीखते हैं। और दूसरी बात यह है कि हिंदी साहित्य को पढ़ने का प्रयास करें, जब आप पढ़ेंगे तो आप में विचार पैदा होंगे, जब विचार होंगे तो उनको आप खुद अपनी भाषा में कागज तक लाने का प्रयास करेंगे।
जी, और चलते चलते डॉक्टर शर्मा, अगर आपकी कोई कविता हमें सुनने को मिल जाती है इस मौके पर, तो सोने पे सुहागा वाली स्थिति वाली बात है ये।
अब अगर आप कहती हैं तो ये तो मेरा एक तरह से कवि धर्म है ही कि मैं कविता करता हूं, तो ये भी है कि भाई सुनाना भी मेरा फर्ज है अगर आप मुझे आदेश दे रही हैं। तो एक देखिए, मैंने कविता अभी कल लिखी थी, उसको मैंने आज ही देखे फाइनल कर रहा हूं, तो आपको वो कविता सुना देता। तो देखिए प्रस्तुत है। तो हिंदी की बातें कर करके हिंदी के स्वप्न दिखाता हूँ, भारत की भी एक भाषा हो सब में ये भाव जगाता हूँ। तो भारत भाषा भोजन के संग आभूषण याद दिलाता हूँ, बहु संस्कृति इस बगिया में भारत का पुष्प खिलाता हूँ। तो हिंदी की बात अगर आए मैं सोते से जग जाता हूँ, अपनों से हिंदी में बोलो ये सबको मंत्र सिखाता हूँ। तो हिंदी की कविता गा गा कर, तो हिंदी की कविता गा गा कर हिंदी की अलख जगाता हूँ, तुम भी हिंदी गुणगान करो लोगों को ये बतलाता हूँ, लोगों को ये बतलाता हूँ। तो अपनों से हिंदी में बोलो, अपनों से हिंदी में बोलो, तुमको भी ये समझाता हूँ, वरना एक पीढ़ी खो दोगे। मैं बिल्कुल सच बतलाता हूँ, वरना एक पीढ़ी खो दोगे, बिल्कुल सच मैं बतलाता हूँ। तो ये मेरी प्रस्तुति थी, इससे मैं समझता मेरा संदेश है कि हिंदी जो अपने लोग हैं उनसे हिंदी में बोलिए, उनसे अपनी मातृभाषा में बोलिए, इस तरह से हिंदी को प्रोत्साहित करिए, ये आपके सभी श्रोताओं से मेरा अनुरोध है।
डॉक्टर शर्मा, आज आप हमसे जुड़े और हमसे इतनी सारी बातें साझा करी, उसके लिए बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और इसी तरह से आशा है कि भविष्य में भी हम जुड़े रहेंगे। नमस्कार एक बार आपको और आपके श्रोताओं को, नमन और नमस्कार।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।